मेरा नाम सायरा है, मैं 21 साल की हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। दोनों मेरे मम्मी अबू पाकिस्तान से हैं और मेरे 5 बहन भाई हैं और मैं पाकिस्तान से तब आई थी जब मैं 6 महीने की थी। काफ़ी अरसे से मैं मेरा घर में दिल नहीं लगता था। मुझे अपने रिलीजन में मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझसे नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही थी और जो भी मैं सुनती थी वो मुझे सही नहीं लगता था कि लोग कुछ कह रहे थे और कुछ और कर रहे थे। इस दौरान मुझे थोड़ी सी मैं अकेला भी अपने आप को महसूस कर रही थी। पर फिर मैंने अपने कुछ पुराने कॉलेज के दोस्तों को कांटेक्ट करना शुरू किया था और उनमें से एक फिर मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। पर उसे पता था कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, तो फिर मैं बहुत 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 दुखी हुई थी इस बात पे। पर उसने सही कहा था, क्योंकि फिर जब मैंने अपने अम्मी अबू को बताया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मुसलमान नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, तो दोनों बहुत 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 गुस्सा हुए थे। पहले मैंने अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी ने कहा कि मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है कि मैंने अपने बहन भाइयों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी मुझसे ये तवक्का नहीं रखी थी। और फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने मेरे अबू को बताया और मेरे अबू ने मुझसे कहा कि मैं चुड़ैल हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब चुड़ैल हूँ। और फिर मुझे एंग्जाइटी अटैक हुआ। उसके बाद 2 महीने मैं सिर्फ घर में रही और फिर काम पे जाती थी। काम पे से मैं 5 बजे घर आ जाती थी और सिर्फ यही, और मैं अपनी अम्मी अबू से बात नहीं करती थी घर में और बस अपने कमरे में रहती थी। फिर एक दिन मेरा दिल नहीं चाहा घर जाने को काम के बाद। मेरा बस दिल था कि मैं वहाँ अपने कॉलिग के साथ बैठूँ, बातें करूँ। तो फिर मैं 8 बजे आई घर। फिर मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, कहाँ थी तुम? मैंने कहा काम पे थी, और कहाँ थी मैं? तो उन्होंने कहा झूठ ना बोलो। और फिर उन्होंने मुझे मारा, मेरे बाल खींचे। मैं जब नीचे थी तो मुझे लाते मारी। और फिर अगले दिन मैं फिर क्राइसिस सेंटर पे आ गई। इस दौरान मैं सिर्फ काम पे जाती थी। काम पे बहुत सारे लोगों को पता था कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा घर पे, और बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों को भी ये पता था, पर वो अपने स्टडीज़ में बहुत बहुत बिजी हैं, तो वो मुझे मदद नहीं कर सकते थे। पर बस मुझे पता था कि काम पे ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं वहीं पे खुश रहती थी। वहीं पे मैं जाके अपना बैचलर थीसिस लिखती थी और वहाँ पे काम करती थी, और मेरा दिल नहीं था घर जाने को कभी भी। जब मेरी अम्मी ने मुझे मारा था, मेरा उसके बाद सिर्फ दिल था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। पर फिर मुझे याद आया कि घर से बाहर लोग हैं जो मुझसे जो नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं। तो बस मुझे यही याद था कि मैंने जाना है, कि मैंने बस निकलना है। उन 2 महीनों में जब मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बस एक दफ़ा निकली मैं अपने बहन भाइयों के साथ मूवी देखने। उस मूवी के बाद मुझे एक औरत मिली जो इन चीज़ों में बहुत, उसे बहुत पता है इन चीज़ों के बारे में। उसका नाम की थी अमेरिया। उससे मेरी मैं सिनेमा में मैंने देखा उसे। मैंने जाके कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो और मेरे आजकल हालात सही नहीं हैं, पर बस मैं بہت خوش ہوں کہ تم یہ کام کر رہی ہو. تو اس نے شکریہ ادا کیا اور وہ پھر چلی گئی. پھر ایک دو دن بعد اس نے مجھے لکھا انسٹاگرام پہ کہ ہم چاہ رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ بنانا اور تمہاری کہانی سننا چاہ رہے ہیں. تو پھر ان دو مہینوں میں میں اس کے ساتھ تعلقات رکھے اور اسے اپنی کہانی بتائی. اور جب حادثہ ہوا تھا تو پھر اگلے دن میں نے اسے فون کیا تھا اور اس نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ, تم اپنے کام والوں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے. وہاں پہنچ کے, کرائسس سینٹر پہنچ کے, مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایک خواب ہے, ایک برا خواب ہے اور امی میں گھر پہنچوں گی. مجھے عجیب لگ رہا تھا. ہم ایک سنسان علاقے میں پہنچے جہاں پہ کمپنیز تھے اور کوئی آبادی نہیں تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ بس سب غائب ہے اس شہر سے. اندر پہنچ کے سیکیورٹی دیکھ کے مجھے وہ احساس ہوا کہ جیسے کہ کوئی جیل ہے. پر لوگ بہت اچھے تھے, انہوں نے بہت اچھا میرا استقبال کیا. پر پہلے دو دن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں رہ کے. کرائسس سینٹر کے پہلے دن وہاں پہ میں صرف وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وقت گزر ہی نہیں رہا, ایک گھنٹہ سالوں کی طرح سے گزر رہا تھا. میں وہاں کے جو پرسنل ہیں ان سے باتیں کرتی تھی, پر وہ بھی آپ صرف ایک حد تک کر سکتے ہو اور پھر بوریت. پر پھر کام والوں نے مجھے فون کرنا شروع کیا, میرے کالیگس نے. انہیں کہا تم آؤ ہمارے گھر کھانا کھا لو, ہمارے ساتھ پھر لو, گھوم لو, کچھ اور سوچ لو. تو پھر پہلے کچھ دن میں صرف اپنے کام والوں کے ساتھ رہی. پھر جو فارمل چیزیں تھیں وہ ہم نے شروع کی. مجھے ایک ٹیم ملا جنہوں نے مجھے مدد کی. انہوں نے یہ کوشش کر انہوں نے کوشش کی کہ میں پوری طرح سے سیف رہوں. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ شاید تم یولین جانا چاہ رہی ہو جہاں تم صحیح فری ہو سکو. پر میرا بالکل بھی نہیں تھا, میرا بالکل ارادہ نہیں تھا یولین جانے کا, کیونکہ پورا میرا میں جنہیں جانتی ہوں پہچانتی ہوں وہ سارے یہاں پہ ہیں. تو پھر میں نے منع کیا. وہاں پہ مجھے ایک تھراپسٹ ملی. وہ بہت اچھی تھی. اس نے مجھ سے باتیں کی. ایک دن میں بہت 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 دکھی تھی. تو پھر اس نے مجھ سے باتیں کی. اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اور اس نے پوری طرح سے سمجھا کہ میں بس ادھر سے نکلنا چاہی تھی, کرائسس سینٹر سے. میں کام پہ جانا چاہی تھی, میں فری ہونا چاہ رہی تھی, آزادی چاہیے تھی مجھے. پر اس نے سمجھایا اور اس نے میری سچویشن کو سمجھا. تو مجھے ایک بہت اچھی تھراپسٹ ملی. پھر کیا نام ہے, میرا جو ٹیم ہے انہوں نے بہت مدد کی. وہاں پہ جو پرسنل ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, آپ سے باتیں کرتے ہیں, آپ کو سیف محسوس کراتے ہیں. اور کچھ وہاں پہ پھر اچھی چیزیں بھی کی میں نے. وہاں پہ انجوائے بھی کیا کچھ. باہر نکلے ہم, نیچر دیکھا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے نیچر دیکھنا. تو ہم باہر نکلتے تھے کبھی کبھی اور ایسی چیزیں کرتے تھے. مجھے اپنا مستقبل صاف نہیں نظر آ رہا. آپ کبھی ان چیزوں پہ شور نہیں ہو سکتے کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ جب بھی مجھے لگتا تھا کہ چلو اب صحیح ہو جائے گا سب کچھ تو پھر خراب ہوئی تھیں چیزیں. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہاں میں دو ہفتوں کے بعد میں کام پہ جا سکتی ہوں, پر پھر میرے امی ابو آ گئے کام پہ اور پھر میں کام پہ نہیں جا سکتی تھی. مجھے یہ لگا تھا کہ कि शायद अब मैं अपने बहन भाइयों से मिल सकती हूँ, पर फिर वो भी नहीं हुआ। मुझे, मैं सही तौर पे नहीं बता सकती कि मेरे मुस्तकबिल में क्या है, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों से मिल लूँ। मैं अपने मेरा जो मैं जो अपना मैं मेरा जो अभी बॉयफ्रेंड है, मैं उसे अपने माँ बाप से मिलवाऊँ और वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो अच्छा इंसान है और मैं भी अच्छी इंसान हूँ और मैं अभी भी उनकी अच्छी बच्ची हूँ। बस मैंने थोड़े से दूसरे ख्यालात रख लिए हैं, पर मैं अभी भी उनकी अच्छी बच्ची हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों को याद करती हूँ, अपने भाइयों को बहुत याद करती हूँ। मेरा सबसे छोटा भाई मेरा बेबी था, मैंने बहुत हिस्सा दिया उसे पालने में। मैं लोग कहते थे मैं उसकी दूसरी माँ थी। मेरा दूसरा भी भाई है जिससे मैं बहुत लड़ती थी, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरी अम्मी को रोकने की कोशिश की जब वो मुझे मार रही थी, पर वो रोक नहीं पाया। मेरे अबू ने उसे रोक दिया। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। अब मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ और भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने मेरी तरह से बुरी चीज़ें देखी हैं। मैं वहाँ पे रहती हूँ, अपना बैचलर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने काम फिर से शुरू कर दिया है। मैं काम पे जाती हूँ पर फिर मैं कहीं और नहीं जाती। बस कोशिश करती हूँ कि मैं उन दोनों जगहों पे रहूँ। अगर और जगह जानी होती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूर जाऊँ कहीं जहाँ मेरे माँ बाप ना जाते हों। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे आके मिलता है, अब रहता है मेरे साथ कभी कभी। और बस काम वालों के साथ बातचीत चलती रहती है, तो मेरा जो भी बाकी का नेटवर्क है उनसे मैं बहुत क्लोज हूँ। 5 साल के बाद मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हों और मैं उन्हें ऐसा मुस्तकबिल दूँ, ऐसी ऐसी परवरिश दूँ जो मुझे ना मिली हो, इतना प्यार दूँ जो मुझे नहीं मिला, और उनसे कहूँ कि तुम जो भी चाहते हो ज़िंदगी में वो तुम कर सकते हो, बस खुश रहो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप, चाहे अगर मेरे बच्चे किसी डेनिश आदमी से हो या कोई और नेशनैलिटी का हो, वो एक्सेप्ट करें मेरे बच्चों को और वो एक्सेप्ट करें कि मैं बस ऐसे रहती हूँ पर मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी बहन भाइयों के भी बच्चे हों, मैं उनसे मिलूँ। बस मैं इस कोशिश को नाकाम नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैंने ये किया है इस दौरान, कि वो फल पाए 5 सालों में। जो मुझे सबसे ज़्यादा खुश करता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं खुश रहूँ और मैं इस चीज़ से भी खुश होती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने भी मुझे मदद की इस बुरे बुरे वक्त में। मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे पता चल चुका है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, चाहे कुछ भी लोग कहें। इतने सारे लोगों ने मेरी मदद की है और बस मैं यही सोच के खुश रहती हूँ कि मैंने ये कदम उठा लिया है। सबसे जो मुश्किल चीज़ थी वो मैंने कर ली है, अब कोई और चीज़ मुझे दुखी नहीं कर सकती। मैंने अपने अम्मी अबू को बताने से पहले बहुत सोचा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फिर से उनकी उनकी तरह से जो वो चाहते हैं वैसा करूं, मुझे बहुत 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 मुश्किल लगा ये फैसला लेने में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने एक दूसरे थेरेपिस्ट के पास गई और फिर मैंने उससे कहा कि मुझसे ये फैसला नहीं ले जाए, मैं नहीं कर सकूँगी ये, मैं बस घर में रहना चाहती हूँ। मैं वैसे ही पुराने तौर पे घुट घुट के उनके पास रहूँगी। तो उसने एक मेरे साथ एक क्या नाम है एक ट्रिक उसने ट्राई किया। उसने दो कुर्सियाँ रखी मेरे आगे, उसने कहा ये एक कुर्सी तुम्हारा मुस्तकबिल है अपने माँ बाप के साथ, और ये दूसरी कुर्सी तुम्हारा मुस्तकबिल है अगर तुम चली जाओगी और तुमने अपने अपने फैसले लेने शुरू किए। तो मैं पहली कुर्सी पे बैठी और वहाँ पे मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। मैंने अपने कज़न के साथ शादी कर ली। मेरा कज़न फिर मुझसे कहेगा कि मुझे बच्चे चाहिए, पर फिर मैं उसे बच्चे नहीं दे सकूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आए और उन्होंने वही चीज़ें फेस करनी हो जो मैंने की हैं। तो मैं उस चेयर पे मैं बहुत रो रही थी। उस कुर्सी पे मेरा बस मैं खुश नहीं थी, मैं रोए जा रही थी। और फिर मैंने बस ये एंड किया कि मुझे अपने मियाँ से तलाक लेनी होगी और फिर से मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा करेंगे। फिर मैं दूसरी कुर्सी पे बैठी और वहाँ पे मैं घर से चली गई। मैं बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने बहन भाई से नहीं मिल सकती। और फिर उसने पूछा और अब क्या हो रहा है, अब 4 महीने 5 महीने गुजर गए, अब क्या हो रहा है। मैंने कहा अब मैं अपने फैसले ले रही हूँ, शायद मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिल गया हो। तो फिर उसने पूछा और क्या, 2 साल बाद क्या, तो शायद हम बच्चे पैदा शुरू करने का बच्चा हाँ शायद हमें ये फैसला करें कि हम एक बच्चा पैदा करें और मैं उस बच्चे को इतना प्यार करूँगी, हम दोनों इतना प्यार करेंगे, और मैं उससे कहूँगी तो तुम्हें जो भी चाहिए दुनिया में वो तुम कर सकते हो। और उस कुर्सी पे मैं खुश हुई और मैं मुस्कुरा रही थी। और फिर मेरे थेरेपिस्ट ने कहा पहली वाली कुर्सी पे तुम एक दफ़ा भी नहीं मुस्कुराई, पर इस पे तुम एक दफ़ा मुस्कुराई, तो तुम्हें खुद पता है तुमने क्या करना है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मुश्किल फैसले हैं इंसान को लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल होते हैं फैसले, पर जब ले लिए होते हैं तो फिर वो आपके काम आते हैं। आप आज़ाद होते हो, आप अपने फैसले ले सकते हो, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता इस तरह से। सिर्फ मारपीट से ही नहीं आपने भागना होता, अगर कोई आपको साइकोलॉजिकली भी टॉर्चर कर रहा होता है तो आप वहाँ नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल होता है ये फैसला लेना और शुरू में कोई खुश नहीं रहता, एकदम से आपको खुशी नहीं मिलती, पर फिर आप बाद में सीखते हो खुश रहना और ख़ुद अपने फैसले लेते हो और खुश रहते हो।